दिन भर 28 नवंबर गुरुवार सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। उद्धव ठाकरे ने ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ।
मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे।
गोडसे को देशभक्त बताने पर बीजेपी ने की साध्वी प्रज्ञा पर कार्रवाई।
नाथूराम गोडसे को यदि देशभक्त मानने की किसी कोई भी किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार।
और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्यों असम के विदेशी ट्रिब्यूनल्स पर लगाए गंभीर आरोप।
ये सिविलियन लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं।
आपकी चिट्ठियां भी होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है। 56 विधायकों वाली शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना रही है। उद्धव के साथ एनसीपी के जयंत पाटिल, छगन भुजबल, शिवसेना से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई और कांग्रेस से बालासाहेब थोराट और नितिन राउत ने मंत्री पद की शपथ ली है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुल 43 मंत्री बन सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल की 3 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा हुई। जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी को जीत मिली, वहीं पश्चिम बंगाल की सभी 3 सीटों कालियागंज, खड़गपुर सदर और करीमपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से 2 अनजान चीजें समंदर की तरफ दागी हैं। जापान कोस्ट गार्ड का कहना है कि उन्हें लगता है कि ये चीजें मिसाइलें थीं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि उत्तर कोरिया बार बार मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, जो वैश्विक शांति के लिए खतरा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई मिसाइल गिरा है, लेकिन उत्तर कोरिया का बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। अभी अभी हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की है। हम जापान के लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए अमरीका, दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ये थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल्बानिया में अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए भूकंप के कारण अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित समुद्र तटीय शहर डुरेस और थुमानी में प्रधानमंत्री एडी रामा ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मलबे से अब तक 45 लोगों को निकाला गया है। डुरेस में रहने वाले ताहिर अक्सामी कहते हैं, भूकंप के कारण मेरा घर पूरी तरह टूट गया है। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे अब खुले में सोने के लिए बाध्य हो गए हैं। मेरे पास आज अपना कहने को शून्य के सिवा कुछ भी नहीं। डुरेस में रहने वाले ताहिर अक्सामी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हांगकांग की स्वायत्तता का समर्थन करने वाले एक विधेयक को मंजूरी देने के बाद चीन ने अमरीका को दुर्भावना से ग्रसित होने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि वो इसके विरोध में कदम उठाएगा। माना जा रहा है कि अगर चीन ने हांगकांग के लोगों के अधिकारों की अवमानना करना जारी रखा तो अमेरिका हांगकांग के साथ अपने खास व्यापारिक रिश्ते तोड़ सकता है। ब्रिटेन की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के लॉर्ड डेविड आल्टन कहते हैं कि ब्रिटेन भी अमेरिका जैसा ही कोई कदम उठा सकता है। इधर हांगकांग में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के लिए उन्हें शुक्रिया कहने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। यूरोपीय संसद ने जलवायु इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित कर दिया है। पर्यावरण बचाने की मुहिम का समर्थन करने वाले यूरोपियन ग्रीन पार्टी ने कहा है कि यूरोप के लिए वक्त आ गया है जब 2016 में पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए वादों को अब मूर्त रूप दिया जाए। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सालाना 2 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने पर सहमति हुई थी। इराक के नसीरिया शहर में सुरक्षा बलों ने कम से कम 15 सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को मार दिया है। प्रदर्शनकारी कई दिनों से लगातार एक पुल पर बैठे हुए थे, जहां से सुरक्षा बल उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर मैं हूं कुलदीप मिश्र। 1966 में मुंबई के जिस शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना का ऐलान किया था, उसी मैदान में आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता।
लेकिन इसी शिवाजी पार्क में एक महीने पहले 8 अक्टूबर को अपनी रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि क्या आपको लगता है शरद पवार जैसे लोग देश प्रदेश चला सकते हैं? नहीं चला सकते, इसलिए हमने बीजेपी का साथ चुना। लेकिन अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बना रही है। उद्धव ठाकरे के साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इस शपथ समारोह में न सोनिया गांधी पहुंची न राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने चिट्ठी भेजकर उद्धव ठाकरे को अपनी शुभकामनाएं जरूर दी हैं। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होंगे, भले ही उन्होंने आज शपथ नहीं ली। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटों पहले अजित पवार ने आज क्या कहा वो सुनिए।
आज फक्त मुख्यमंत्री आणि 6 त्यांच्याबरोबर कॅबिनेट मंत्री एवढे सहकारी शपथ घेणार आहेत। मी आज शपथ घेणार नाही।
अजित पवार ये कह रहे थे कि वो आज शपथ नहीं लेंगे और उनकी पार्टी से जयंत पाटिल और छगन भुजबल शपथ लेने वाले हैं, जो कि अब शपथ ले चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई के शिवाजी पार्क, जहां मौजूद हैं बीबीसी मराठी सेवा की संवाददाता प्राजक्ता पोल। प्राजक्ता, दिन भर में आपका स्वागत है। शिवाजी पार्क में आप मौजूद रहीं, शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा, वहां का मंजर थोड़ा बताएं पहले कि क्या शारीरिक भाषा उद्धव ठाकरे की थी, क्या नारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने लगाए? प्राजक्ता, आपको आवाज आ रही है? प्राजक्ता से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये आपको बताते हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया है, लेकिन इसे एक बेमेल गठबंधन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस और एनसीपी से बिल्कुल अलग रही है। ऐसे में नई सरकार के सामने क्या अंतर विरोध होंगे, मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार मंगेश वैशंपायन से।
इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पहले सेंटेंस में 2-3 बार सेक्युलर का प्रयोग किया है। आपको ये देखना होगा कि शिवसेना कोई आइडियोलॉजी है ऐसा पार्टी नहीं है। शिवसेना एक भावनिक मुद्दे पे, जैसे मराठी है, हिंदुत्व है, ऐसे मुद्दों पे पॉलिटिक्स करने वाली एक रीजनल पार्टी है। अब उनका हिंदुत्व का मुद्दा हाथ का वो निकाल लिया इन्होंने। अब उनको जो आगे आने वाले एजेंडा है मोदी सरकार के कि कॉमन सिविल प्रोग्राम NRC, इस मुद्दे पे शिवसेना को अपनी भूमिका जो है उनकी वो रख पाना बहुत मुश्किल है।
खासतौर से राम मंदिर को लेकर के, तो
राम मंदिर का तो हल हो गया, राम मंदिर का इशू नहीं है, लेकिन आगे आने वाले मोदी सरकार के जो एजेंडे पे है ये इश्यूज, उस पे शिवसेना क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि उसका जो सामना
तो है। ये जो ये समस्या है ये किसके लिए है? ये समस्या इन तीनों पार्टियों के गठबंधन के लिए आप देख रहे हैं, या इसको ज्यादा बड़ी चुनौती आप भाजपा के लिए मान रहे हैं?
नहीं, भाजपा के लिए नहीं, ये बड़ी चुनौती है इसी सरकार के लिए। महाराष्ट्र में जो नई बनी है इसी सरकार के सामने ये चुनौतियाँ है। कर्नाटक में तो विचारधाराओं का भी टकराव नहीं था, लेकिन ये तो शिवसेना बिल्कुल ही अलग है। और शायद इसीलिए कांग्रेस इज सीन इन हेजिटेटिंग मूड, वो अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि सोनिया जी नहीं गई आज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ये, लेकिन वो किसी को भेज सकती थी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साझा न्यूनतम प्रोग्राम वाली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राष्ट्रवादी और शिवसेना के लीडर्स थे। कांग्रेस के क्यों नहीं आए, तो बोले उनको ऐसा लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 नहीं 5 बजे है। होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेशन था, आज कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी होगी।
हाँ, ये स्पेकुलेशन करना, लेकिन फिर भी ये बात बार बार उठती है और अतीत में कई बार गलत भी साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई नेशनल ट्रेंड इसमें हमें देखना चाहिए? क्या भविष्य में कोई हो सकता है कि कांग्रेस ये पहल करे कि क्षेत्रीय दलों को उनकी विचारधारा से इतर साथ लाए भाजपा के खिलाफ?
अगर ये प्रयोग यशस्वी होता है महाराष्ट्र में शिवसेना और दोनों कांग्रेस का, तो इसमें बीजेपी के NDA में जो पार्टीज है, नीतीश कुमार है, वो पार्टीज, वो दल कांग्रेस के साथ आके अलग एक प्रोग्राम बना सकते हैं भविष्य में। ये नेचुरल नहीं है, फिर भी अगर ये यशस्वी होता है प्रयोग, उसका नेशनल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
आज की डेट में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विनर आप किसको मानते हैं?
एक 80 साल का राजनेता है जिसका नाम है शरद पवार। अंतर विरोध से भरी हुई 3 पार्टियां इकाई और वो अब गवर्नमेंट चलाएगी और उसका मुखिया कौन होगा जिसको एक दिन का भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का अनुभव नहीं। ये लगता है इसमें कोई स्टेट्समैन के बिना ये हो सकता है, तो वो स्टेट्समैन है शरद पवार।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मंगेश वैशंपायन। एक बार फिर मुंबई शिवाजी पार्क चलते हैं। प्राजक्ता, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तब नहीं हुआ था, अब शायद हो गया है। ये बताएं कि मंजर कैसा था शपथ ग्रहण समारोह, आपने देखा, शारीरिक भाषा क्या थी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की?
जी बिल्कुल, हम अगर देख सकते हैं ये विजुअल्स में, एक तो 3 पार्टी एक साथ आई है और तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक साथ आके ये सब, शिवाजी पार्क की एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री में ये बाला साहेब ठाकरे जो भी सभा लेते थे, जो भी रैलीज होती थी, जिसकी शुरुआत होती थी वो शिवाजी पार्क से होती थी। और आज उद्धव ठाकरे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो आज शिवाजी पार्क से उन्होंने शपथ ली है। बहुत सारे कार्यकर्ता आए थे, लेकिन एक अभी एक डिफरेंस जो नजर आ रहा था, जो शिवसेना का कार्यकर्ता, जो शिवसेना कौन है ये उद्धव ठाकरे जी के नारे लगा रहे थे, वो शरद पवार जी के भी नारे लगा रहे थे। जिस प्रकार से ये अंतर विरोध पार्टियां एक साथ आके अभी ये सरकार चलाएगी, लोगों को आशा है, जो कुछ किसान है वो किसान यहाँ पे मौजूद थे और उनको उनका ऐसा कहना है कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, जो किसानों की प्रॉब्लम्स है।
पीछे अभी भी मैं शोर सुन पा रहा हूँ नारेबाजी का। प्रजक्ता, एक बात और समझना चाहते थे, नवाब मलिक ने तो ये BBC मराठी से बातचीत में कह दिया है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा हमें अभी तक क्या मालूम है, क्या एक और उप मुख्यमंत्री पद होगा जो कांग्रेस को मिलेगा?
जी अभी तक तो ऐसी कौन सी भी बात आ नहीं रही है, कांग्रेस पद जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है और NCP को जो है वो मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और कांग्रेस को एक उसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद के अलावा एक मंत्री पद एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्राजक्ता पोल, हमसे जुड़ी थी सीधे शिवाजी पार्क मुंबई से।
BBC हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से अपनी पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रक्षा मामले की सलाहकार समिति से हटाने का फैसला किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में सोच की निंदा की है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उनकी बात को गलत समझा गया है। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मालेगांव धमाका मामले में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कल संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने से उठा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साध्वी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वही उनकी आत्मा है।
वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी, वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें वो आत्मा उनकी वो है।
वहीं अपने बयान पर हुए विवाद के बाद सफाई देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने एक ट्वीट करके कहा, कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित न हों, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने ऊधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा। बस विवाद बढ़ने पर अब भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा को संसद की रक्षा मामलों की सलाहकार समिति से हटा दिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने संसद जाते वक्त ये जानकारी पत्रकारों को दी।
सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है।
लेकिन उनकी इस कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए विपक्षी दल संसद में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर चर्चा की मांग करते रहे। संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा,
सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा, ये सरकार को खुल कर कहना चाहिए। ये नाथुराम गोडसे पंथी है, ये गांधी पंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते।
प्रज्ञा का बयान कल ही लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उस पर चर्चा का अनुरोध भी ठुकरा दिया। वहीं संसद में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर। मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार।
विपक्ष के हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि गांधी की विचारधारा हमेशा प्रासंगिक रहेगी।
महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श है और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे और उनकी जो विचारधारा है उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं।
बीजेपी ने साध्वी के बयान से तो किनारा कर लिया है, क्या वो साध्वी से भी किनारा कर पाएगी? दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने असम में एनआरसी के मामलों की सुनवाई कर रहे विदेशी ट्रिब्यूनल की अदालतों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि असम में विदेशी ट्रिब्यूनल के कारण लोगों में दहशत फैली हुई है। हमारे साथी जुबैर अहमद ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष आकार पटेल से संपर्क किया और पूछा कि भारत के विदेशी ट्रिब्यूनल पर ऐसे आरोप वे किस आधार पर लगा रहे हैं।
देखें, पहले तो ये कोर्ट नहीं है, ये सिविलियन लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, और ये बड़ी एक भयानक बात है, कि सरकार के द्वारा इन लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि आप जो लोग इन ट्राइब्यूनल्स में अमुक फीसद लोग को भारतीय नागरिक नहीं मानते, वो टारगेट वो नहीं जो ला पाते, उन लोगों को नौकरियां से हटाया जाता है।
अच्छा।
ये टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये जो वकला है उनको ये टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। जो लोग टारगेट नहीं अचीव करते हैं उनसे ये बिल्कुल साफ तरीके से उनको समझाया जाता है कि आप इतने लोगों को गैर भारतीय जाहिर ना करें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से एक्सटेंड नहीं होगा।
कितने लोगों से आपकी बात लगभग हुई थी?
बहुत से लोग हैं, जिन लोगों के दस्तावेज बिल्कुल ही साफ थे, जहां पर कोई भी डाउट नहीं था, वैसे कई लोगों को हमने दिखाया है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, अनगिनत। आप अंदाजा
मतलब सैकड़ों में,
के जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं है और बहुत से लोग इनमें से ऐसे हैं जो सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की बुनियाद पर उनको उस लिस्ट से उनको निकाला गया है।
और जो डिटेंशन सेंटर्स अभी 10 की सैंक्शन की है केंद्रीय सरकार ने, और उसमें जो अंदर लोग अभी से खदशा जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन होगी, इसकी बातें भी वहां पे लोगों ने की आपसे?
ये जेल है जहां से कोई निकल नहीं सकता। आप जो कैदी हो, आपने कोई जुर्म किया हो, उस जुर्म की आपको सजा मिली हो, फिर भी आपके पास वो हक है जो इन लोगों के पास नहीं है।
मतलब पैरोल मिल सकता है,
आपको पैरोल पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पता कि आपको, आपका कोई बच्चा हो तो वो कहाँ होगा। परिवारों को अलग किया जाता है। इन लोगों ने कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सिर्फ साबित नहीं कर पाए कि ये नागरिक नहीं है, ऐसे ट्राइब्यूनल के सामने जो बिल्कुल प्रेजुडिस्ड और बायस्ड है।
लेकिन जो गृह मंत्री हमारे भारत के हैं, उन्होंने अभी बयान दिया था कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा।
बकवास है वो, बिल्कुल जाहिर है। यही शख्स है जो लोगों को दीमक कहते हैं। बीजेपी की भाषा में, बीजेपी इन दोनों चीज को एक साथ में देखें आप सीएबी और एनआरसी को, तो ये कम्युनिटी स्पेसिफिक है और बिल्कुल ही टारगेटेड है।
19 लाख लोग हैं इसमें, तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसमें ओबीसी और दलित और हिंदू सभी हैं। तो क्या ये फिर ये जो बिल पास हो जाएगा तो उसमें वो लोग हटा दिए जाएंगे जो मुस्लिम नहीं है?
यही कारण है कि सीएबी की बात कर रही है भाजपा, कि जो लोग इस 19 लाख में और पता नहीं कितने लोग होंगे और भारत में जब ये एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा, वो लोग जो मुसलमान नहीं है उनको सीएबी के तहत इस लिस्ट से निकाला जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के एकदम ही खिलाफ है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। इस मामले पर अब तक भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर चीन और अमरीका आमने सामने आ गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए हैं जो हांगकांग की स्वायत्तता का समर्थन करता है। चीन ने इसे द्वेषपूर्ण बताया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
20 नवंबर को कांग्रेस और सेनेट में मंजूर किए जाने के बाद हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले इस बिल पर बुधवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए और उसे कानून बना दिया। इस नए कानून के तहत अमरीकी विदेश विभाग को हर वर्ष कांग्रेस और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करना होगी जिसमें इस बात की पुष्टि की जाएगी कि चीन हांगकांग में विशेष आजादी को बरकरार रखे हुए है, और अगर चीन वहां विशेष आजादी बरकरार नहीं रखता है तो अमरीका हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जे को वापस ले लेगा। माना जाता है कि इस तरह का विशेष दर्जा खत्म होने के कारण हांगकांग की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इस कानून में अमरीकी राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएं जो हांगकांग में आम लोगों को प्रताड़ित करने में या मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हों। अमरीका ने हांगकांग के साथ एक विशेष व्यापारिक संबंध बनाए रखा है। जून महीने से हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद भी व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस कानून के कुछ हिस्सों पर ही अमल करेंगे क्योंकि ये कानून राष्ट्रपति की विदेश नीति में दखलअंदाजी करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर हस्ताक्षर करते समय ये भी कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन और हांगकांग के लोगों के प्रति सम्मान के लिए इस बिल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उधर चीन ने अमरीका द्वारा इस कानून को पारित किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे चीन और हांगकांग के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक सख्त बयान जारी कर कहा कि इस अमरीकी कानून से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी उसूलों का घोर उल्लंघन किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि चीन की सरकार और चीन के लोग ऐसे बदमाशी वाले रवैये का सख्त विरोध करते हैं। हांगकांग के बारे में इस बिल को अमरीकी सेनेट में पेश करने वाले फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो ने दोनों सदनों में बिल की मंजूरी के बाद कहा था कि ये बिल किसी देश के मामले में हस्तक्षेप का मामला नहीं है।
This bill isn't an interference. It's our policy.
ये बिल हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि ये हमारी नीति है, और ये बहुत जरूरी है कि दुनिया को ये पता होना चाहिए कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रूप है और वो कैसे लोग हैं ऐसे समय में जब वो दुनिया भर में अपना उदार चेहरा सबके सामने पेश करते हैं। अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो के शब्द। उधर हांगकांग की सरकार ने भी अमरीका के इस कानून को एक अनावश्यक और अनुचित कदम बताया है, लेकिन अमरीका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी के सांसदों ने इस बिल को भरपूर समर्थन दिया है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और आज है गुरुवार और आज आपको मिलते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब आपकी राय में।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में सूर्यांशी पांडे का भी।
नमस्कार,
आपकी तरफ से मैंने कह दिया। अच्छा सूर्यांशी, इससे पहले कि हम आपकी राय कार्यक्रम शुरू करें, आज हमारे पास एक ईमेल जो आया है सबसे ऊपर रखा हुआ है महावीर यादव का। कहां से आया है देखें तो?
ये लिखते हैं ग्राम डेवा तहसील कुमसी जिला
कुसमी। मैं देख रहा हूं कुसमी।
हां कुसमी
जिला सीधी मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी इनसे बातचीत हुई तो इनका कहना था कि बीबीसी में 1984 से सुनता हूं और आपसे बात हो, बीबीसी के किसी इंसान से बात हो, ये इनका मनोरथ था। तो ये पूरा नहीं हो पा रहा है कह रहे
तो
थे।
पूरी करी।
हमने उनको फोन किया और उनसे बात हुई, बहुत खुश हुए। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बड़ी कृपा किया प्रभु आप हमारे ऊपर, धन्यवाद। कम से कम आप हमारे से बात तो कर लिए इतने बड़े।
अच्छा सुनिए, ये बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आज जो कार्यक्रम जाएगा आपकी राय उसमें ये आपकी आवाज हम प्रसारित करेंगे। बीबीसी ने आपको किस तरह से मदद की, क्या क्या मिला बीबीसी सुन के आपको?
बीबीसी सुन के सर हमको एक आत्मा में इतना बड़ा संतोष और इतना बड़ा हमको माने विश्वास हुआ है अपने संविधान और अपने देश के और समाज के प्रति, और ये अपनी अधिकार के प्रति की नहीं, हमारा अधिकार कहीं है और हमारा सुनने वाले कोई है, और एक निष्पक्ष संस्था के रूप में ये बीबीसी देश का और समाज का सेवा करने के लिए तैयार है। उससे हमारा किसी प्रकार कभी संपर्क हो जाता तो हम
तो हो गया संपर्क। महावीर यादव जी, हमने आपका ईमेल पढ़ा और आपको फोन करके आपकी राय कार्यक्रम में आप शामिल होंगे आज, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे श्रोता महावीर यादव जी जो सीधी मध्य प्रदेश में हमको सुनते हैं। फिलहाल और दूसरी चिट्ठियां पढ़ लीजिए।
अगला खत अमित मिश्रा जो भागवतपुर भलुवैया पोस्ट रुपहारा थाना शिकारगंज मोतिहारी बिहार से लिखते हैं, और ये कहते हैं कि वो अभी BA पार्ट टू के छात्र हैं और बीबीसी हिंदी को 2009 से सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे खासकर विवेचना दुनिया जहां खेल और खिलाड़ी इंडिया बोल पाकिस्तान से वसतुल्ला खां की डायरी बेहद पसंद है। नए सहकर्मियों से वो खुश तो हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा असहज महसूस करते हैं।
ये देखिए 20 साल की उम्र में रेडियो सुनते हैं और ये कह रहे हैं कि नए साथियों से थोड़ा असहज महसूस करते हैं। अब मैं सूर्यांशी जी आप पर छोड़ता हूँ कि ये क्यों असहज महसूस करते हैं
और किनसे असहज महसूस करते हैं
नए साथियों से नहीं तो आपकी ये बात ठीक है इनकी कि कुछ लोग जो रेडियो की पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई है, कई बार उच्चारण का दोष होता है, कई बार उनकी रवानगी में कमी होती है, हम उस पर ध्यान देते हैं जितना दिया जा सकता है, तो कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। एक और चिट्ठी पढ़ दें उसके बाद हमारे पास समय समाप्त हो रहा है।
अगला खत मुंबई की लोकल ट्रेन से आता हुआ लग रहा है क्योंकि इन्होंने लिखा है, रणविजय सिंह ने लिखा है, और ये कहते हैं कि दिन भर कार्यक्रम एक कंप्लीट पैकेज है, पूरे दिन की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए मिलता है, और मैं मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हुए बीबीसी हिंदी सुनता हूं और सफर कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता, और मेरी सलाह ये थी कि बीबीसी को मुंबई लोकल के अथॉरिटी से बात करके सभी लोकल में FM की तर्ज पर बीबीसी के दोनों कार्यक्रमों को प्रसारित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
अरे वाह, बहुत अच्छा रणविजय सिंह जी, आप तो लोकल में सफर करते हुए या लोकल रेलगाड़ी में सफर करते हुए कार्यक्रम सुनते हैं। जिसको चाह होती है उसको राह मिल जाती है, तो जैसे आपको राह मिली हमारे दूसरे जो श्रोता हैं उनको भी राह मिलेगी, मोबाइल पर सुन सकते हैं। हाँ, जहां तक लोकल अथॉरिटी से संपर्क करने की बात है तो उसके लिए बीबीसी और मुंबई लोकल के बीच में अग्रीमेंट होगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है और वो उसके बहुत सारे उसमें नियम कानून होते हैं। फिलहाल तो आप जैसे सुन रहे हैं उसी तरह से सुनिए और हमारे संपर्क में बने रहिए। कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त भी दीजिए क्योंकि समय अब हमारे पास नहीं बचा है। चलते चलते पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चलते चलते एक बार फिर महाराष्ट्र का अपडेट बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है और कहा है कि मुझे भरोसा है कि वे महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेंगे। भाजपा नेता पूनम महाजन ने कहा है कि सिर्फ शरद पवार ही इस अप्राकृतिक गठबंधन को जोड़े हुए हैं और इस गठबंधन में कांग्रेस की बात की 10% अहमियत भी नहीं है। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्य में शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं, जबकि उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में आई है। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से 2 अनजान चीजें समंदर में दागी हैं। अल्बानिया में अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए भूकंप में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हांगकांग में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के लिए उन्हें शुक्रिया कहने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसी सप्ताह ट्रंप ने हांगकांग की स्वायत्ता का समर्थन करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। ये बीबीसी हिंदी रेडियो के लिए मेरा आखिरी कार्यक्रम था। मुझे यानी कुलदीप मिश्र को अनुमति दीजिए। बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।